हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेहाने जैसे ही कहा कि ये वेदांत ही गर्लफ्रेंड से कॉलेज में मिली है, वेदांत का कन्फ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया। वेदांत ने एक लंबी सांस लेते हुए वेहा की कमर पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, पर बेटा मैं क्यों जाऊंगा कॉलेज? मेरी कॉलेज खत्म हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं, अब मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज में क्या करेगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की को डेट करूंगा? अगर बाय चांस मेरी गर्लफ्रेंड हो भी तो कम से कम वो मेरी कलीग या फिर मेरी कोई बिजनेस पार्टनर हो सकती है, कॉलेज में कैसे होगी? वेहा की आंखें रोने के कारण लाल थीं। उसने अपनी सूजी आंखों को वेदांत के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, आपको पसंद नहीं है अपनी उम्र से कम उम्र की लड़कियाँ? वेदांत का मन कर रहा था अपना सर जाकर दीवार से मार ले। उसने अपने होठों पर जीप फेर कर कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी कॉलेज में करेगी क्या? अगर तुम्हें ये लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और तुम हर बार टॉपिक से भटक क्यों जाती हो, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम मेरी हर बात को पकड़ो मत, उसका जवाब दो जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वेहा ने रोनी सूरत बनाकर कहा, आप टॉपिक से भटको तो अच्छा और मैं भटक जाऊँ तो मैं बुरी हूँ। इसका यही मतलब हुआ ना कि आप मुझे कभी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी तो उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, और दूसरी बात, वो तो मेरी सीनियर थी, मैं तो उससे भी छोटी हूँ, फिर आप तो मुझसे नफरत करते होंगे ना? वेदांत ने अपने एक हाथ को उसके माथे पर रखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी बहकी बहकी बातें करती हो, एक दिन ना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा मैं तुम्हें। वेदांत का जो लहजा कुछ देर पहले नरम था, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, क्योंकि वो बातें ही इतनी बेतुकी कर रही थी। वेहा का पूरा चेहरा ब्लैंक हो चुका था। वेदांत की ये गुस्से वाली आवाज़ सुनकर वेदांत ने उसे चुप देख कर कहा, अब कुछ बोलोगी भी तुम? यार, मैंने जब बोला है सामने से आकर कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब नहीं होगी ना? तुम तो सीधा डाइवोर्स तक पहुंच गई, मुझे एक बार पूछा भी नहीं कि मैं डाइवोर्स चाहता हूँ या नहीं, बस अपना सामान पैक कर लिया और हो गई रेडी जाने को। कभी सोचा है अगर तुम यहाँ से ऐसे चली जाओगी तो तुम्हारे परिवार पर क्या बीतेगी? शादी के बाद लड़कियाँ ऐसे घर में नहीं रहती हैं, वरना उसके परिवार को ताने मिलते हैं। तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा होता कभी कभी, कभी कभी दुनिया वालों के बारे में भी सोचा करो। और आई स्वेयर, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम चाहो तो मैं उस लड़की से मॉर्निंग में मिल भी लूंगा, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। वेहा शांति से वेदांत की गोद से उठ गई और फिर बाथरूम में चली गई। वेदांत बस उसे देखता रह गया। उसके जाने के बाद उसने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर कहा, मुझे लगा था मैं इसे संभाल लूंगा और सुधार लूंगा। वेदांत को अपना वो डायलॉग याद आया था जब उसने पहली बार वेहा को देखकर बोला था मंडप में कि कितना भी बचपना क्यों ना हो, वेदांत ने मानी उसे सुधार ही देगा। लेकिन फिलहाल उसे लग रहा था कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वेहा बहुत ज्यादा जिद्दी है और उसे सीधा करने के लिए प्यार से नहीं बल्कि फटकार से काम लेना होगा। वहीं वेहा बाथरूम के अंदर जाते ही शावर के नीचे बैठ चुकी थी। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए सिसकते हुए बोल रही थी कि क्यों मैं हर बार दूसरों के बारे में सोचूं, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अगर मैं ही खुश नहीं हूं तो मैं बाकी लोगों को कैसे खुश कर सकती हूं? और क्या मतलब हुआ कि वो कम उम्र की लड़कियों से प्यार नहीं करेंगे? वो लड़की मुझसे क्यों झूठ बोल रही थी? वेहा के दिमाग में अलग ही खिचड़ी बन चुकी थी। उसे ना तो खुद समझ आ रहा था, ना वो सामने वाले को समझा पा रही थी कि उसे आखिर चाहिए क्या। आज उसके पीरियड्स का आखिरी दिन था। बस ये सोचकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली थी कि कल से उसके ये इमोशनल मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। वहीं किचन में निवेदिता काम कर रही थी जब अनाही तेज कदमों से चलकर अपनी साड़ी को सही करती हुई वहां आई। उसे इतनी तेजी से आता देखकर निवेदिता ने मुस्कुरा कर कहा, बहुरानी, आराम से, ऑफिस में इतना काम करने के बाद तुम्हें किचन में काम करने की जरूरत नहीं है और तुम आराम से फ्रेश हो सकती थी। 10 मिनट में कौन शावर लेकर आता है, खासकर लड़कियाँ, उन्हें तो आधा घंटा लगता है। अनाही ने अपने बालों को क्लेचर से बांधते हुए धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इतना टाइम नहीं लगता है शावर में, और वैसे भी आप अकेले यहाँ बोर हो रहे हो, बाकी सब तो बाहर बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो मुझे तो आपकी हेल्प करने आना ही था। उसके बाद निवेदिता के साथ अनाही भी किचन में काम करने लगी। निवेदिता उसकी नज़र उतारते हुए बोली, मैं खुद को बहुत ही लकी समझ रही हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली है, वरना आज के ज़माने में ऐसी लड़कियाँ मिल पाना बहुत मुश्किल है। फिर निवेदिता ने आज के रूहान के बर्ताव को याद करते हुए कहा, और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरे दोनों बेटे एक साथ काम करेंगे, उनके बीच की दीवार इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और अभी भी सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। अनाही ने आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या आप अभी मुझे बाहर वाली समझती हैं? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और घर के लोगों को थैंक यू नहीं बोला जाता है और मैं तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जिसके वजह से ये सारा क्रेडिट आप मुझे दे रही हैं। रूहान जी खुद काफी समझदार हैं, उनको पता है कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है। आप खामखा परेशान हो रही हैं। अनाही के बाद ये बात सुनकर निवेदिता बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गई, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा कितना समझदार है और कितना नहीं। वहीं कमरे के अंदर रूहान शावर ले रहा था, लेकिन उसका गला बार बार सूख रहा था। उसे अजीब सी तलब लग रही थी, उसका सर घूम रहा था। आज ऑफिस में बैठकर उसने अपने और वेदांत के रिश्ते के बारे में इतना ज्यादा सोच लिया था कि उसके दिल की धड़कन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार उसका बीपी लो हो रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम से बाहर आया और बाहर आकर बेडसाइड बने ड्रॉअर से कुछ निकालने लगा। काफी सामान बिखरने के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी बॉक्स मिल ही गई, जिसमें व्हाइट कलर की पिल्स रखी हुई थी। रूहान ने जल्दी से उनमें से एक पिल्स निकालकर अपने मुंह में रखी और आंखें बंद करते हुए बेड पर लेट गया। उसके दोनों हाथ बेड पर फैले हुए थे और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए सीलिंग को घूर रहा था। डिनर रेडी होने के बाद अनाही तेज कदमों से कमरे के अंदर आई। उसने जैसे ही रूहान को ऐसे लेटे हुए देखा तो वो हैरान हो गई। वो तेज कदमों से रूहान के पास आई और आसपास बिखरे सामान को देखते हुए बोली, रूहान जी सब ठीक है ना? आप ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये सामान क्या? ये आपकी उस बिल्ली ने बिखेरे है। एक दिन ना वो मुझसे बहुत मार खाएगी। कल तो मेरी बालकनी का सामान बिखेर रखा था। अनाही अपनी ही धुन में मस्त होकर बोल रही थी, तो वहीं रूहान अपनी नशीली आंखों को खोलकर एक टक उसके चेहरे को देख रहा था। उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि अनाही बोल क्या रही है, लेकिन उसके हिलते हुए लब उसे काफी खूबसूरत लग रहे थे। रूहान ने उठकर बैठते हुए अनाही का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर अनाही ने कन्फ्यूजन में रूहान की तरफ देखा और फिर इशारे से पूछा कि क्या हुआ है। रूहान ने एक झटके से अनाही को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे अनाही सीधा उसकी गोद में जा गिरी। अनाही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं और उसके दोनों हाथ रूहान के कंधे पर थे। रूहान उसके चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसके करीब बढ़ने लगा, जिससे अनाही के माथे पर पसीना आ गया।
अनाही ने हकलाते हुए कहा, रूहान जी आप क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? आपको आखिर हुआ क्या है?